بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. یہ سورہ النازعات آج شروع ہو رہی ہے. یہ مکی سورت ہے, یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, 81 نمبر پر نازل ہوئی ہے. اس میں کل 46 آیتیں ہیں. سورہ نبا کے بعد سورہ انفطار سے پہلے اس کا نزول ہوا ہے. نازعات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. نازعات کہتے ہیں ان فرشتوں کو جو کافروں کی, نافرمانوں کی روحوں کو بہت سختی کے ساتھ ان کے بدن میں سے نکالتے ہیں. جب موت کا فرشتہ روح لینے کے لیے آتا ہے تو نافرمانوں کی روح پورے بدن کی رگوں میں, کونے کونے میں چھپتی ہے, بھاگتی ہے, لیکن یہ فرشتے کھینچ کر کے نکالتے ہیں. اور اس کی کیفیت, طریقہ کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ روئی ہوتی ہے, کپاس روئی, وہ پانی میں بھیگی ہوئی ہو اور ایک کانٹے کی ڈالی لے لو, شاخ, کانٹے 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 والی لکڑی لے لو اور اس کو روئی کے اندر داخل کر دو, پھر وہ لکڑی کھینچو تو روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کانٹے کے اوپر آ جائیں گے اور پوری روئی ادھر 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 منتشر, بکھری بکھری ہو جائے گی. بس اسی طرح کھینچ کر, گسیٹ کر, چیرے چیرے کر کے, لیرے لیرے اڑا کر فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکالتے ہیں. ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. ترجمہ دیکھیے, قسم ہے ان فرشتوں کی جو نافرمانوں کی, کافروں کی روح کو بہت سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں اور جو ایمان والوں کی روح کی گیراہ کو, گانٹ کو نرمی سے کھول دیتے ہیں. نیک صالح لوگوں کی روح کو بہت نرمی سے کھول کے لے جاتے ہیں. اللہم ارزقنا منہ بفضلک و کرمک یا رب العالمین. اور ہوا میں تیرتے ہوئے آتے جاتے ہیں فرشتے, بہت تیزی سے آتے جاتے ہیں, بہت آسانی سے آتے جاتے ہیں. آج تک دنیا نے کوئی راکٹ, کوئی اسپیس شٹل ایسی نہیں بنائی جتنی فاسٹ فرشتے آتے جاتے ہیں, منٹوں میں, سیکنڈوں میں, زمین سے آسمان, آسمان سے زمین. پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے میں دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں فرشتے. اللہ کی طرف سے جو حکم بھی ملے گا دوڑ دوڑ کر کے پورا کریں گے. پھر جو حکم ملا اس کو پورا کرنے کی تدبیر یعنی انتظام کرتے ہیں. پھر اللہ نے جو حکم دیا وہ حکم دنیا میں کیسے پریکٹیکلی طور پر جاری کرنا, اس کی تدبیر کرتے ہیں. پانچ چیزوں کی قسم کھائی. آگے اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفا, کہ جس دن ہلا دینے والی ہر چیز کو ہلا ڈالے گی, یعنی قیامت, سور پھونکا جائے گا, زلزلہ آئے گا, دھرتی کمپ آئے گا, पूरा जगत हिलने लग जाएगा, पूरी दुनिया हिलने लग जाएगी। तत्बाउ हर रादिफा, जिसके बाद पीछे आने वाली चीज आवेगी। दूसरा तर्जुमा, फिर उसके पीछे दूसरा झटका आएगा। कयामत के दिन झटके पे झटके आएंगे, पहले सूर फूंक के दुनिया खत्म, फिर दोबारा सूर फूकेंगे, कयामत का मैदान हो जाएगा। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, कितने दिल उस दिन धड़कते होंगे। जब कोई डेंजर बात सामने होती है तो आदमी का दिल धड़कने लगता है, तो कयामत के दिन भी इंसान का दिल धड़कने लगेगा, धड़ धड़ धड़। अबसारुहा खाशिया, उनकी आंखें झुकी हुई होगी, मारे शर्म के मारे डर के आंखें झुकी होगी। यकूलूना इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, वो कयामत का इनकार करने वाले कहते हैं कि क्या हम पहली वाली हालत पर फिर लौटा दिए जाएंगे। यानी जो लोग कयामत को मानते नहीं, वो यूं कहते हैं कि दुनिया में मरने के बाद क्या नई जिंदगी आएगी, कयामत कोई चीज है, वो मानते नहीं है, वो ना कहते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, क्या जब हम खोखली यानी पुरानी हड्डियों में बदल चुके होंगे, फिर भी हमको दोबारा पैदा किया जाएगा। देखो यहां याद रखना, मक्का के ये जो बड़े बड़े काफिर थे ना, वो जमाने में दफन करने का रिवाज था। आज भी बहुत सारे हिंदू लोग दफन करते हैं मुर्दों को, तमाम जलाते नहीं हैं। तो कयामत, वो लोग यूं कहते थे कि आदमी को मर जावे, दफन कर देवे, गोश्त खून सब मिट्टी हो जावे, हड्डी हड्डी रह जावे, हाड़ पिंजर रह जावे, ढांचा रह जावे, क्या फिर उस हड्डी में से अल्लाह इंसान को दोबारा पैदा करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है। कालू तिल्क इदन करतुन खासिरा, कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तब तो बड़ी नुकसान देने वाली वापसी होगी। यानी अगर दोबारा पैदा किया जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा। फइन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, सुनो सो वो तो एक ही सख्त आवाज होगी, कयामत के दिन एक भयानक आवाज होगी सूर की। फइदाहुम बिस्साहिरा, जिसके बाद वो सब लोग फौरन खुले मैदान में आ जाएंगे। कयामत का मैदान बिल्कुल खुला ओपन मैदान होगा। इतनी सारी चीजें बयान करने के बाद जो लोग कयामत को नहीं मानते, उनको अल्लाह ताला एक अजीब चीज बताकर मनवा रहे हैं कि मानो। हल अताक हदीथ मूसा, ए नबी क्या तुमको मूसा अलैहि सलाम का वाकिया पहुंचा। जो लोग कयामत को मानते नहीं, अल्लाह ने इतना समझाया फिर भी कयामत को नहीं मानते, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत नरम दिल थे, आपके दिल में बहुत सदमा होता था कि भाई ये लोग कयामत को क्यों नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली देने के लिए मूसा अलैहि सलाम का किस्सा सुनाया, और ये किस्सा तसल्ली के तौर पर सुनाया जा रहा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपके जमाने के काफिर लोग कयामत को नहीं मानते, मूसा अलैहि सलाम के जमाने में भी नहीं मानते थे, तसल्ली दी जा रही। और दूसरी अजीब बात बतलाऊं रब तकी, कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने एक अजीब मौजजा दिया था जो अभी आ रहा है, अभी आप सुनेंगे इंशाल्लाह, कि एक सूखी लकड़ी सूखा डंडा उनके हाथ में रहता था, जो शादी के वक्त पर मूसा अलैहि सलाम के ससुराल से उनकी बीवी के अब्बा यानी ससराबाजी खुसर अब्बा ने वो हदीये में दिया था। आज कौन सा लड़की का बाप हिम्मत करेगा कि वो अपने जमाई को डंडा हदीये में देवे। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ससरा बाजी ने खुसर अब्बा ने उनको डंडा हदीये में दिया था, वो डंडा था सूखी लकड़ी थी, मूसा अलैहिस्सलाम उसको जमीन पे डालते थे तो वो जिंदा सांप बन जाता था। अल्लाह ताला ये किस्सा सुना करके यूं समझा रहे हैं कि एक सूखी लकड़ी को अल्लाह जिंदा कर सकते हैं तो सूखी हड्डी को अल्लाह दोबारा इंसान को जिंदा कर सकते हैं। इध नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुकद्दस तुवा, जब मूसा अलैहिस्सलाम को उनके रब ने तुवा नामी एक मुकद्दस मैदान में आवाज दी थी, ये तकरीबन 16 आयत का तर्जुमा हो गया। अल्लाह सुबहानहु व ताला इस मुबारक सूरत में जो उलूम मजामीन बयान किए गए उसका हमें यकीन अता फरमाए, उसकी अजमत अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए। अब समझिए कि वन्नाज़िआती गर्क़ा, तो ये नाज़िआत किसको कहते हैं ये भी एक समझने की चीज है। बहुत सख्ती के साथ किसी चीज को खींचा जावे तो उसको कहते हैं नाज़िउन। देखो एक होता है किसी को खींचना मस्ती में मजाक में मोहब्बत में प्यार में आहिस्ता आहिस्ता नरमी नरमी, वो नहीं, बहुत सख्ती से जबरदस्ती कोई किसी को खींचे उसको कहते हैं नाज़िआत। अल्लाहु अकबर। और फिर फरमाया वन नाशिताती नश्ता, निशात यानी शौक और खुशी, हंसी खुशी शौक के साथ काम करना, साबिहात यानी तैरना, कोई रंज नहीं तकलीफ नहीं आसानी से कोई काम करना, और साबिकात के माने अपने जैसे लोगों में आगे बढ़ जाने की फिक्र करना। जैसे कि तीन बच्चे कुरान पढ़े तो हर बच्चा ये कहे कि मैं आगे बढ़ू मैं आगे बढ़ू, तीन आदमी लारी लगा के सब्जी बेच रहे हैं तो एक चाहे कि मैं ज्यादा धंधा करूं मैं ज्यादा धंधा करूं, ये है फस साबिकात सबकात। और मुदब्बिरात का क्या माना, काम की तदबीर करना, काम का तरीका कि ये काम कैसे आसानी से अच्छी तरीके से हो जावे उसकी तदबीर उसकी प्लानिंग करना, ये है फल मुदब्बिराति अमरा। अब देखिए अल्लाह सुबहानहु व ताला ने यहां फरिश्तों की बात बयान फरमाई कि जो फरिश्ते काफिरों की नाफरमानों की रूह निकालने के लिए आते हैं, बहुत सख्ती से रूह निकालते हैं, रूह को आत्मा को बहुत तकलीफ होती है चाहे जाहिर में किसी को नजर ना आवे लेकिन अंदर अंदर उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब ये फरिश्ते किसी ईमान वाले की रूह निकालने के लिए आते हैं तो सख्ती नहीं करते, बहुत आसानी के साथ उसकी रूह निकाल के चले जाते हैं। बाज मर्तबा हमको जाहिर में कोई नेक आदमी को मरते वक्त तकलीफ नजर आती है लेकिन वो तो जाहिर की तकलीफ है, उसकी रूह को अंदर से बहुत इत्मीनान होता है। वन्ना शिताति नश्ता, अल्लाहु अकबर। और मोमिन की रूह के सामने जब अल्लाह की नेमतें जन्नत की खुशखबरी अल्लाह का सलाम मिलता है तो उनकी रूह जल्दी 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 अल्लाह के दरबार में जाना चाहती है। इसीलिए देखो किसी आदमी को मुसलमान को ईमान इंतकाल के वक्त सकरात होवे उसकी वजह से ये मत समझना कि नऊज़ु बिल्ला उसको बुरी मौत आई, सकरात ये बुरी मौत की निशानी नहीं है, ये जाहिर में हमको दिख रहा है, अंदर से रूह को बड़ा इत्मीनान होता है। खुद मेरे और आपके आका ताजेदारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल के वक्त पर थोड़ी बहुत सकरात हुई थी और हुजूर ने फरमाया अला इन्न लिल मौति सकरात। ध्यान से सुनो, मौत की सकरात की तकलीफ होती है। वो असल उसकी हिकमत बाज मुहद्दिसीन ने ये बयान की कि हुजूर का नूरानी बदन और हुजूर के नूरानी बदन में आपकी नूरानी रूह 63 बरस तक रही। आपका नूरानी बदन मकान है और रूह उसमें 63 बरस रही। अब जब अल्लाह ताला उस रूह को वापस बुला रहे तो उस रूह को नूरानी बदन छोड़ने में जो तकलीफ हुई वो जाहिर में सकरात के तौर पर नजर आई, वो कोई बुरी निशानी नहीं है, हरगिज नहीं। फिर फरमाया कि ये फरिश्ते वस्सा बिहाती सबहा रूह कबस करके बहुत तेजी से हवा में तैरते हुए आसमान की तरफ रूह लेके चले जाते हैं। फसाबिकाति सबका, फिर उस रूह को जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचाने में जल्दी करते हैं। नेक आदमी की रूह को जन्नत में, नाफरमानों की रूह को दोजख की हवाओं में, ईमान वालों की रूह को जन्नत की हवाओं में और काफिरों की रूह को जहन्नम की हवाओं में पहुंचाने में जल्दी करते हैं। फल मुदब्बिराति अमरा, और फिर ये फरिश्ते नेक आदमी की रूह के लिए राहत का सारा सामान पहुंचा देते हैं और नाफरमानों की रूह के लिए अजाब का सारा सामान पहुंचा देते हैं, और ये सब कब्र में होता है। लिहाजा नेक आदमी की रूह को कब्र में रखा, फिर उनकी कब्र में ये लोग जन्नत की खिड़कियां खोल देते हैं, जन्नत का बिस्तर लाकर के बिछा देते हैं, जन्नत की खुशबुएं आना शुरू हो जाती है, बस मजे मजे में उसकी रूह। तो गोया नेक लोगों की रूहों के लिए अच्छा सामान, नाफरमानों की रूहों के लिए तकलीफ का सामान, ये सब चीजें फरिश्ते सारी की सारी तैयारी कर डालते हैं। देखो, एक मर्तबा कयामत के दिन सूर फूंका जाएगा, दुनिया खत्म। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूंक जाएगा, कयामत का मैदान हो जाएगा। तत्बअहर रादिफा, दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा और तमाम लोग मैदाने कयामत के अंदर आ जाएंगे। कसम पर जवाब कसम क्या, जिन लोगों ने अल्लाह की खुशी में जिंदगी गुजारी उनके दिल कयामत के दिन सुकून से होंगे, और जिन लोगों ने अल्लाह की नाराजगी में जिंदगी गुजारी उनके दिल कयामत के दिन हैरान और परेशान होंगे। कुलूबु यौमइज़िन वाजिफा, बहुत सारे दिल धड़कते होंगे, वो अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और दिल की घबराहट चेहरे पर नजर आएगी। दुनिया में बाज मरतबा आदमी दिल में टेंशन में होता है, जहन में गम में होता है तो चेहरे पर पता चलता है, उदास 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 मालूम होता है। बिल्कुल कयामत के दिन के ये हालात होंगे। अल्लाह ताला डरा रहे हैं ईमान वाले को। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला उस दिन के बुरे हालात से हम सब की हिफाजत फरमाए। देखो भाई, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बड़े बड़े काम सौंपे हैं। इस वक्त भी फरिश्ते काम कर रहे हैं, कयामत के बाद भी काम कर रहे हैं। इस वक्त फरिश्ते काम कर रहे हैं, इंसान भी काम कर रहे हैं, और कयामत के बाद तो अकेले फरिश्ते ही काम करेंगे, सारी जवाबदारी फरिश्तों के हवाले। और अल्लाह ताला की यहां भी वो पूरा सिस्टम है, पूरे काम सिस्टोमेटिक होते हैं। अल्लाह ताला ने चार बड़े बड़े फरिश्ते पैदा किए और अल्लाह ने चारों फरिश्तों को अलग अलग विभाग, अलग अलग शौबे, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए। जैसे हजरते जिब्राइल अमीन तमाम फरिश्तों के सरदार, उनको अल्लाह ने क्या काम दिया? नंबर एक, पैगंबरों के पास, रसूलों के पास वही लाना। नंबर दो, हवाओं का निजाम। नंबर तीन, जंग लड़ाइयों का निजाम। दूसरे बड़े फरिश्ते हजरते मीकाईल अलैहिस्सलाम, इनके काम कौन से? नंबर एक, बारिश बरसाना, जमीन से खेती उगाना। नंबर तीन, बंदों को रोजी पहुंचाना। तीसरे बड़े फरिश्ते हैं हजरते इसराफील अलैहिस्सलाम, उनके कितने काम हैं? नंबर एक, सूर फूंकना। नंबर दो, इंसान और जानवरों के अंदर रूह डालना। नंबर तीन, लोहे महफूज की निगरानी करना। नंबर चार, रोजी उम्र और हर चीज का अंदाजा और एस्टिमेट करना। और चौथे बड़े फरिश्ते हैं हजरते इजराइल मलिकुल मौत, उनके मुताल्लिक एक काम ये है, रूहों को कब्ज करना, मौत देना। दूसरा काम, बीमारियां देना। तीसरा काम, आफत बला मुसीबत, ये सब काम चौथे फरिश्ते हजरत इसराफील को सौंप इसराइल को अल्लाह ने सौंपे हैं। और ये चारों फरिश्तों के हाथ के नीचे हम गिन नहीं सकते, इतनी तादाद में फरिश्ते हैं। उसके अलावा अल्लाह का अर्श उठाने वाले फरिश्ते, करूबी फरिश्ते, फरिश्तों की भी बहुत सारी जमात है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह के फरिश्तों का लश्कर, अल्लाह ताला का हर तरह का लश्कर अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानते। यकूलून इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, काफिर लोग कहते हैं कि मरने के बाद क्या हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा। हाँ, जिंदा होना है। इजामन नखिरा किसको कहते हैं? खाली चीज हो, उसके अंदर हवा गुजरे और आवाज पैदा होए। तो इंसान मरने के बाद गोश्त खून सब मिट्टी में मिल गया, हड्डियां खाली हो गई, उसको अगर तुम बाहर रखो और हवा चले तो हड्डी में से आवाज निकलती है, वो है इजामन नखीरा। अजीब व गरीब अल्लाह ताला की कुदरत के ऐसी हड्डी में से अल्लाह दोबारा इंसान को पैदा करेंगे। देखो, इंसान अल्लाह की ताकत को अपनी ताकत के साथ तुलना न करे, तकाबुल न करे, कंपेयर न करे। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला को सामान की जरूरत नहीं, असबाब कोई जरूरत नहीं, आलात की जरूरत नहीं। फइन्नमा हिया जजरतुन वाहिदा, जजरा जिंदगी एक झिड़की है, जिंदगी एक झिड़की से वजूद में आ जाती है, एक झटका है। और कयामत के दिन भी ऐसा ही होगा कि एक झटका, एक आवाज होगी और तमाम रूह बदन के अंदर दाखिल हो जाएगी। फ़ाइदा हुम बिस्साहिरा, साहिरा का एक माना है कि कयामत का मैदान सफेद रंग का होगा, बिल्कुल सपाट होगा। कयामत के मैदान में पहाड़ नहीं, गार नहीं, आड़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम सपाट जमीन होगी। फइन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदतुन फइदा हुम बिस्साहिरा, दूसरी मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो एक चीख की, चिंगार की आवाज ऐसी होगी कि सब बेदार हो जाएंगे। गोया के मौत एक नींद है और कयामत के दिन सब लोग जाग जाएंगे, बेदार हो जाएंगे। अजीब हाल होने वाला है कयामत के दिन। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम का किस्सा सुनाया, अजीब किस्सा। उसका मुख्तसर खुलासा मैं आपको सुनाता हूं। फिरौन मिस्र में जो बादशाह होता था उसका नाम फिरौन रखते थे, लकब उपनाम फिरौन रखते थे। ऐसे बहुत सारे फिरौन हुए। हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने के अंदर जो फिरौन बादशाह था वो भी बड़ा डेंजर था। 1000 आदमी उसके दरबार में हाजिर रहते थे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को ईमान की दावत लेकर के उसके पास भेजा, लेकिन वो ईमान नहीं लाया और काफिर बनकर के उसने जिंदगी गुजारी। हजरत मूसा अलैहि सलाम से ऐसा हुआ कि गलती से एक मिस्री आदमी को आपने कत्ल कर दिया था, किबती आदमी, फिरौनी आदमी, गलती से मार डाला। उसका किस्सा पूरा कुरान में है। तो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को बदले में कत्ल करने का प्लान बनाया। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम मिस्र से, इजिप्त से निकलकर मदियन चले गए और तकरीबन 10 बरस तक मदियन में रहे। और मदियन के अंदर एक बुजुर्ग की लड़की से आपका निकाह हुआ। 10 बरस रहने के बाद आपने अपने खुसर से इजाजत मांगी कि मुझे वतन मिस्र जाना है, मेरी माँ को देखूं जाकर, मेरे बड़े भाई हारून की मुलाकात करूं। तो उनके खुसर अब्बा बहुत अच्छे थे, कि जाओ अपने वतन चले जाओ। और मूसा अलैहि सलाम अपनी बीवी को लेकर के वतन आने के लिए रवाना हुए। मूसा अलैहि सलाम ने यह सोचा कि 10 बरस हो गए हैं, तो मैं मुझसे जो भूल से एक आदमी का कत्ल हो गया था, लोग वो किस्सा भूल गए होंगे, किसी को याद भी नहीं रहा होगा 10 साल में, ये सोच करके मूसा अलैहि सलाम आए। तो मूसा अलैहि सलाम के खुसर ससरा बाजी ने 2 गुलाम भी खिदमत के लिए साथ दिए। हजरत मूसा अलैहि सलाम अपनी बीवी सफूरा आपा को लेकर, उम्मा सफूरा अम्मा को लेकर के रवाना हुए। हजरत मूसा अलैहि सलाम के मिजाज में गैरत बहुत थी, शर्म बहुत थी। इसीलिए उस जमाने में जो काफले चलते थे तो काफले के साथ चलना आपको पसंद नहीं था, कि भाई जानवर पर सवारी करने की, जानवर पर बैठते वक्त, जानवर से उतरते वक्त कोई गैर महरम मेरी बीवी को देख लेवे। इसीलिए मूसा अलैहि सलाम ने काफले में जाना पसंद नहीं किया, बल्कि आप अकेले अपनी बीवी को लेकर के 2 गुलामों के साथ रवाना हुए। और आपने दूसरा जो आम रास्ता होता है वो रास्ता छोड़ करके दरिया किनारे का रास्ता लिया, ताकि अलग थलग जावे। और उसमें एक बात ये भी थी कि जो मेन रास्ता था, मेन हाईवे था, उस रास्ते से आते तो हो सकता था कि फिरौन के हाथ नीचे का कोई गवर्नर आपको पहचान कर आपको वो कत्ल वाले केस में पकड़ लेवे और सजा देवे। इसीलिए आपने दूसरा रास्ता लिया, दरिया के किनारे वाला क्रोस्टल हाईवे लिया आपने। हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास एक खच्चर था, उस खच्चर के ऊपर अपना सामान रख दिया और गुलाम, एक गुलाम को कहा कि तू ये खच्चर लेकर चल आगे। कुछ बकरियां भी थी साथ में, तो दूसरे गुलाम को कहा कि ये बकरियां तू चला इस तरीके से। और मूसा अलैहि सलाम अपनी बीवी के साथ एक जानवर के ऊपर सवार हो गए। मदियन से मिस्र आ रहे, तकरीबन 8 दिन का सफर, रास्ता भूल गए। और रास्ता भूल करके जहां तूर पहाड़ है उधर चले गए। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, रास्ता नहीं मिला। शाम हो गई, रात हो गई, और ये जुमा की रात थी, ज़िकादा की 18 तारीख थी, सर्दी ठंडी का मौसम था, और जो बकरियां थी वो जंगल में इधर उधर चरने लगी। तो दोनों गुलाम बकरियों को जमा करने के लिए लग गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के पास बैठ गए, सफर की तकलीफ और सफर जानवर पर हजरत मूसा अलैहि सलाम की बीवी को दर्द होने लगा, दुखावा होने लगा, क्योंकि हमल था पेट में और हमल के दिन पूरे हो रहे थे, इसीलिए अचानक दर्द शुरू हो गया जंगल में। तो बीवी ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को कहा कि ठंडी है, रात है, कहीं से आग ले आओ ताकि हम गर्मी हासिल करें, रोशनी मिले। तो हजरत मूसा अलैहि सलातु व सलाम ने गुलामों को कहा, देखो जंगल में देखो, तलाश करो, कहीं कोई आग नजर आती है। तो गुलामों ने बेचारों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, इधर उधर गए, कोई आग नहीं, कोई माचिस नहीं, कोई लाइटर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कहां से आग लावे। तो फिर मूसा अलैहि सलाम खुद आग की तलाश में निकले। आपने दाहिने हाथ की तरफ एक पहाड़ था, उस पर दूर से आपने देखा तो कुछ रोशनी नजर आई, कुछ लाइट नजर आई। मूसा अलैहि सलाम ने अपने गुलामों को और अपनी बीवी को कहा कि तुम लोग यहां रुको, मुझे पहाड़ पर कुछ रोशनी और लाइट नजर आ रही है, मैं वहां जाकर के आग ले आऊं, और आग जल रही है तो कोई आग सिलगाने वाला होगा तो उसको मैं रास्ता भी पूछ करके आऊं, तुम यहां रुको। फकाल लि अहलिहिम कुतु इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा, के तुम यहां रुको, मैं जाता हूं अभी आग ले आओ। वो मूसा अलैहि सलाम गए पहाड़ पर, वो जो आग नजर आ रही थी ना, वो आग नहीं थी, वो तो एक नूर था, नूर। और वहां एक दरख्त था, बेली, वेल, काई की बेल, औसज की बेल, अपने यहां भी होती है ये बेली, ऐसे ही बहुत लंबी लंबी होती रहती है, वो उन्नाप के दरख्त की तरह होती है एक बेली, लंबी लंबी वो चलती है, उसके लिए जमीन भी बहुत ज्यादा नीचे ले, आकाश बेल भी उसको कहते हैं, लोग गार्डन में और घरों में शो में भी उस बेली को लगाते हैं। तो वो बेली थी वहां पर बहुत सारी, और उसके ऊपर ये आग थी, लेकिन ये आग बड़ी अजीबोगरीब थी। आग जब किसी दरख्त पर लगती है तो झाड़ जल जाता है, पत्ते जल जाते हैं, डालियां जल जाती है, लेकिन ये आग अजीब थी कि जड़ से लेकर ऊपर तक जितनी ज्यादा आग लगती थी इतना ये दरख्त ज्यादा हरा हरा होता था, चमकता था, ग्रीन ग्रीन होता था, तरोताजा होता था, जलता बिल्कुल नहीं था, बहुत तेज चमक थी वहां, रोशनी थी, नूर था, और नजर भी वहां जम न सके, और आजू बाजू फरिश्तों की तस्बीह की आवाज आ रही थी। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने देखा तो उन्होंने घास, लकड़ियां, तिनके, उसका एक पूरा बनाया और उसको जलाने के लिए करीब आए कि मैं आग में से जलाऊं, लेकिन जैसे ही मूसा अलैहि सलाम करीब में जलाने के लिए आए तो आग मूसा अलैहि सलाम के सामने आ गई दौड़ करके एकदम से। तो आप घबरा गए मूसा अलैहि सलाम और पीछे हट गए, आग भी वापस चली गई। दो तीन मरतबा किया, मूसा अलैहि सलाम आग में से जलाने जाते तो वो आग लपक के आगे आ जाती, फिर मूसा अलैहि सलाम पीछे हट गए तो आग भी पीछे चली गई। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम हैरान हैरान, ए अल्लाह ये क्या चीज है, ये क्या चीज है कि अजीब आग जल रही है और दरख्त जलता नहीं, पत्ते काले नहीं होते, लकड़ियां नहीं जलती, बल्कि जो है लकड़ी और दरख्त तो और ज्यादा हरा हरा चमक वाला रोशन होता है। फिर अचानक ये हुआ कि उस आग में से एक बहुत बड़ा नूर निकला, और ऐसा नूर निकला कि کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام چیزیں روشن ہو گئی، جگمگا اٹھی، اور ایسا نور، ایسا نور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بھی چندیا گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور فرشتوں نے تسبیح کی آواز بھی بہت اونچی کی، زور زور سے فرشتے تسبیح پڑھنے لگے، اور ایک دم سے آگ میں سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نا علیک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اور یہ آگ کی طرح جو روشنی ہے وہ تو میری تجلی ہے، اپنے جوتے اتار دو. اس جگہ کے اوپر اللہ کی تجلی آئی اور اللہ کے فرشتے حاضر ہوئے، اسی لیے یہ جگہ کعبہ کی طرح، مسجد حرام کی طرح ہو گئی. اسی لیے فخلا نالیک، اپنے جوتے نکال دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز جو سنی نا، تو صرف کان سے نہیں سنی، پورا بدن، بدن کا ہر عضو، بدن کا ہر حصہ، ہر بال اس آواز کو سن رہا تھا. یہ دلیل تھی کہ یہ آواز اللہ تعالی کی آواز ہے. عجیب آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی، یقین ہو گیا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آواز ہے. پھر حکم ہوا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر ڈالو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑا ڈنڈا زمین پر ڈالا تو وہ تو اجگر بن گیا، ازدہا بن گیا، ڈریگن بن گیا، اور دوڑنے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام پر تھوڑا اثر ہوا، تو اللہ کی طرف سے جواب ہوا کہ اس اجگر کو، ازدہے کو پکڑ لو. تو جیسے دوسری مرتبہ پکڑا تو وہ تو پھر سے لکڑی بن گیا. کیسی اللہ کی قدرت کہ لکڑی پھینکی تو اجگر بن گیا، پھر اس اجدہے کو، ڈریگن کو پکڑ لیا تو پھر لکڑی بن گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں دبایا اور کھینچا تو وہ تو سورج کی طرح چمکنے لگا، جگمگانے لگا، ہاتھ سفید سفید ہو گیا. واہ 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 واہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر جو ایمان کا نور تھا، اس کا تھوڑا سا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائنے ہاتھ پر آ گیا، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہو گیا. جو ایمان دل میں ہے اس کی تھوڑی سی روشنی ہاتھ میں آ گئی تو ہاتھ ایسا چمکنے لگا کہ سورج سے زیادہ چمکدار ہو گیا. تو دل کے اندر جو ایمان ہے اس کا پورا نور اگر باہر آ جاوے تو کیسی روشنی اور کیسی لائٹ ہو جاوے. ہر ایمان والے کو انشاءاللہ یہ روشنی پل صراط کے اوپر نظر آئے گی. جب ایمان والا پل صراط پر آئے گا تو پل صراط کے اوپر اس کے دل میں سے ایمان کا نور نکلے گا، جیسے کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے، اور پورا پل صراط جگمگائے گا، چمکے گا، اور اس روشنی میں ایمان والا فٹافٹ پول کو پار کر لے گا انشاءاللہ. اللہ ہم کو بھی اس میں سے بنا دے وے. اور وہ اوسج، وہ بیلی آج بھی ایسی ہی ہے. میں الحمدللہ اس جگہ کے اوپر گیا ہوں، اور وہاں پر جاتے فخلع نالے قرآن کی اس آیت پر عمل بھی کیا کہ جوتے نکال کر کے وہ بیلی کے پاس گئے اور وہ بیلی دیکھی جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نور اترا تھا. اس کی پوری تفصیل میں نے اپنی سفر کی جو کارگزاری میں لکھتا ہوں، دیکھی ہوئی دنیا کے نام سے، اس کے تیسرے حصے میں موجود ہے. یہ چار حصے تیار ہے، پانچواں حصہ بھی چھپنے جا رہا ہے انشاءاللہ. دیکھی ہوئی دنیا گجراتی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور انٹرنیٹ پر یہ کارگزاری کے تمام بیان ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اس کے اندر آپ پورا تفصیل سے اس کو سن لینا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت معرفت عطا فرماوے. اذهب الى فرعون انه طغى. گزشتہ کل سورہ النازعات شروع ہوئی تھی، تقریباً 16 آیتیں بتلائی گئی تھی، آج 70ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. 17ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے کہ موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر اس کو کہو کہ کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ تو درست ہو جاوے، تو سدھر جاوے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو اس سے ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑا معجزہ دکھایا۔ ایسے تو دو بڑے معجزے دکھائے تھے، ایک تھا عصا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اور دوسرا تھا سفید چمکتا ہوا ہاتھ۔ لیکن ایک ہی مجلس کے اندر آپ نے دونوں معجزے دکھلائے، اور دونوں معجزے دکھانے کا مقصد بھی ایک تھا، اپنی نبوت کو ثابت کرنا۔ اسی لیے اس کو آیت الکبرا، ایک نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ صرف عصا وہ اصل نشانی تھی، اور چمکتا ہوا ہاتھ اس کے ساتھ تھا، ضمناً تھا۔ اور اس سے ایک بات یہ سمجھ کے اندر آئی، عجیب بات، کہ مفسرین نے بھی لکھا ہے اس کو کہ عصا ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزے میں دکھلایا، اور ڈنڈا یہ غضب غصے کی چیز ہے کہ کسی پر ناراضگی ہو جاوے تو ڈنڈے لگاؤ اس کو۔ تو گویا کہ نبی دنیا کے لوگوں کو جب اللہ کے دین سمجھاتے ہیں تو آخرت میں، قبر میں جو سزا ہونے والی ہے، اس کو بھی پوری اہمیت کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ڈنڈا ہے، ڈنڈا جہنم میں فرشتے سپاٹیں گے، قبر میں سپاٹے ماریں گے۔ یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ فکذب وعصا، پھر بھی اس فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اور اس نبی کی بات نہیں مانی۔ ثم ادبر یسعا، پھر پیٹ پھیرا کر فرعون چلا اور موسیٰ کے خلاف کوشش کرنے لگا، موسیٰ کے خلاف دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پیٹ پھیرا کر چلا کہ موسیٰ کا ویروت کیسے کیا جاوے۔ فحشر فنادا، پھر لوگوں کو جمع کیا اور اونچی آواز لگائی۔ فقال انا ربکم الاعلا، اور فرعون نے یوں کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ عجیب ہے، اللہ ایسے گندے دعووں سے آپ کی میری ہمیشہ حفاظت فرماوے۔ ایک مصر کی حکومت سطح ہاتھ میں آ گئی تو فرعون اپنے آپ کو بڑا خدا کہنے لگا، عجیب بات ہے۔ دیکھو بھائی، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، یقیناً اس واقعے میں نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى، یقیناً اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہو۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے انسانو، کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ تعالیٰ نے आसमान की छत को बुलंद किया, यानी आसमान की बुलंदी को ऊंचा किया। सो उसको ठीक ठाक बनाया, सो उसकी गोलाई बराबर कर दी। वागतश लैलहा व अखरज दुहाहा, और उसकी रात अंधेरी बनाई और उसके दिन की धूप को जाहिर कर दिया। रात दिन बदलते हैं, सूरज निकला दिन आ गया, सूरज डूब गया रात आ गई, और सूरज आसमान के अंदर है। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और जमीन को उसके बाद बिछा दिया, यानी ये जमीन को अल्लाह ने रहने के काबिल बना लिया, और उसके रहने वालों की तमाम जरूरियात के असबाब अल्लाह ने जमीन के अंदर बना दिए। अखरज मिन्हा माआहा व मरआहा, और इस जमीन से जमीन का पानी और उसका चारा निकाला। वल जिबाल अरसाहा, और पहाड़ को उसके ऊपर गाड़ दिया, पहाड़ों को उस जमीन पर कायम कर दिया। मता अल्लकुम वली अनामिकुम, ताकि तुमको और तुम्हारे जानवरों को फायदा पहुंचावे। अल्लाहु अकबर। ये है सूरह वन्नाज़िआत की आगे वाली आयाते करीमा और उसका तर्जुमा खुलासा। कल मैंने आपको हज़रत मूसा अलैहि सलाम का किस्सा बयान करना शुरू किया था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को नबी बनाया। मदियन से आ रहे थे, आग लेने गए और अल्लाह की तरफ से नबी बना दिए गए, और हुक्म दिया कि जाओ फिरौन के पास। और फिरौन के पास जाने का मकसद ये है ताकि फिरौन को अच्छा बनाओ, फिरौन को क्वालिटी पीपल में से बनाओ, फिरौन को बेहतरीन इंसान बनाने की तदबीर करो। फिरौन अल्लाह की हद से, अल्लाह की बॉर्डर से बाहर निकल गया था। इतना ज्यादा आवारा और आजाद बन गया था कि उसने खुदा होने का दावा कर दिया था। जाओ और जाकर उसको समझाओ और कहो, फकुल हल्लक इला अंत जक्का। अल्लाह अल्लाह, फिरौन जैसे फिरौन के लिए अल्लाह ताला ये कहलवा रहे हैं कि अगर तू जो नबी की बात मान जाएगा तो बड़े मर्तबे का हो जाएगा, कामिल वली बन जाएगा, आरिफ बिल्लाह बनेगा। नबियों का काम है उम्मतियों को अल्लाह का वली बनाना, और उसके लिए अल्लाह का फजल और नबी की इत्तिबा शर्त है। और अल्लाह का फजल तो था ही फिरौन की तरफ मुतवज्जे, इसीलिए तो मूसा अलैहि सलाम को भेजा कि जाओ मूसा फिरौन को वली बनाओ, इला अंत जक्का, कि तेरा दिल पाकीजा हो जावे, तेरे अखलाक पाकीजा हो जावे, तू अल्लाह का वली बन जावे। सुभान अल्लाह, क्या मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि फिरौन जैसा फिरौन अगर अल्लाह के नबी की बात मान लेवे तो अल्लाह का वली बन जावे, तजक्का हो जावे। तो अगर हम लोग नबी की इत्तिबा करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा भी तस्किया हो जाएगा, दिल की सफाई हो जाएगी, कामिल वली बन जाएंगे। और सुन्नत की इत्तिबा से बढ़कर के वली बनने का कोई रास्ता नहीं, बड़ा रास्ता नहीं हो सकता। मपिंदार सादी के राहे सफा, तवारफ तजुस दर भये मुस्तफा। خلاف پیمبر کا سیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. جس کو بھی اللہ کا ولی بننا ہے جنت میں جانا ہے تو پیغمبر کی سنت پر عمل کرو تو کامل ولی بن جاؤ گے. آگے کیا فرمایا؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخَشَىٰ. تو اپنے رب اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی خوبیاں، اللہ کے کاموں کو یقین کر لے، اپنی آنکھ سے پہچان لے اور تیرے اندر خشیت اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ایسا راستہ بتاتا ہوں کہ اس راستے کے ذریعے تو اپنے رب کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے کاموں کو یقین کی آنکھوں سے پہچان لے گا اور تیرے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا اور تیرا یہ شرارتی طوفانی نفس آتما مر جائے گا. سبحان اللہ. نبی کی رہبری کی برکت سے انسان کی زندگی میں اللہ کی خشیت اور ڈر آتا ہے. تو فرعون کو جا کے موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو فرعون جواب میں کیا کہنے لگا؟ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. فرعون کہنے لگا او موسیٰ، تو وہی ہے، بچپن میں میرے محل میں رہتا تھا، میں نے تجھے پالا بڑا کیا، ہاں، اور تُو نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا، تو نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، اب تو اس مرتبے پر ہو گیا کہ تو فرعون کا ہادی بن کے آیا، فرعون کا مرشد بن کے آیا، فرعون کو راستہ بتانے آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل صحیح بات ہے. تلک نعمتن تمنہا علیہ. سچ بات ہے، تیرے گھر میں میں بڑا ہوا، تیرے یہاں کھایا پیا، تیرے احسانات سب کچھ ہے، لیکن جب میں تیرے ڈر سے بھاگ کے مدین چلا گیا اور مدین سے واپس آ رہا تھا تو میرے اللہ نے مجھے رسول بنایا، علم عطا فرمایا اور تیرے پاس ہدایت کی دعوت لے کر بھیجا. تو فرعون کہنے لگا موسیٰ، اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو کوئی چمتکار دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دو معجزے دکھائے. ایک تو ان کے سسرال سے جو گفٹ میں ڈنڈا ملا تھا وہ اللہ کے حکم سے ڈالا زمین پر تو وہ تو اجگر بن گیا، ازدہا. کتنا بڑا اجگر بنا، ذرا سنو. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ڈنڈے نے جب اجگر ازدہے کی شکل اللہ کے حکم سے بن گئی تو اتنا بڑا منہ کھولا، اتنا بڑا منہ کھولا کہ پورا فرعون کا محل اس کے منہ کے اندر لقمہ بن جاوے. منہ کھولتے ہیں تو دو جبڑے ہیں، ایک نیچے کا ایک اوپر کا، تو اس اجگر نے، ازدہے نے اپنا ایک جبڑا نیچے زمین پر اور دوسرا جبڑا جو کھولا تو فرعون کے محل کے اوپر. اور فرعون اتنا گھبرایا، اتنا گھبرایا کہ اپنے تخت پر سے کود کے بھاگا جان بچانے کے لیے اور تخت کے نیچے چھپ گیا. ارے ارے، تو تو اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا، کیوں کود کے بھاگا؟ اور اس کو دست لگنے شروع ہو گئے، جاڑے چھوٹ گئے، اور اتنے دست لگے، اتنے دست لگے کہ پھر زندگی بھر وہ دست کی بیماری ختم نہیں ہوئی. یہ جو ڈنڈا تھا موسیٰ علیہ السلام کا عجیب تھا، اس کی کچھ خوبیاں میں آپ کو بتلاؤں. ایک خوبی اس کے اندر یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دریا پہ مارا، سمندر پہ مارا تو 12 راستے بن گئے، دریا پھٹ گیا. عجیب، اللہ نے اس ڈنڈے میں خوبی رکھی تھی، یہ تو قرآن میں ہے. دوسری خوبی یہ کہ ایک پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈنڈا مارا تو اس کے اندر سے پانی کے 12 چشمے جھرنے پھوٹنے لگے، یہ بھی قرآن کے اندر ہے. तीसरा कमाल इस डंडे के अंदर ये था कि कुएं के अंदर से पानी निकालना हो तो मूसा अलैहिस्सलाम वो डंडे को कुएं में लटकाते थे तो जितना नीचे पानी होवे वो डंडा खुद ब खुद इतना लंबा हो जाता था, जितना नीचे पानी इतना लंबा डंडा हो जाता था। और आपने देखा है कि बहुत से डंडे के ऊपर चमड़े की रस्सी बांधी होती है, प्लास्टिक की रस्सी होती है, तो ऐसी रस्सी मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे के साथ भी थी। उसके साथ मूसा अलैहिस्सलाम डोल बांध देते थे तो वो डंडा पानी भी अंदर से निकालता था कुएं में से। और चौथी खूबी उसके अंदर ये थी कि जब अंधेरी रात होती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम उसको रख देते थे तो उसके अंदर से दो लाइट निकलती थी। जैसे कि अपने यहाँ ये लाइट के बड़े बड़े खंभे होते हैं, लाइट के पोल होते हैं, तो इस तरह वो डंडे में से दो लाइट निकलती थी। और पांचवी खूबी ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम सो जाते तो वो डंडा वहां खड़ा होकर के पहरा देता था, चौकीदारी करता था। छठी खूबी ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम बकरियों को चराने के लिए जन्नत में जंगल में जाते तो वो डंडे को वहां रख देते तो वो डंडा खुद बकरियों की चौकीदारी करता था, चौकीदारी और हिफाजत करता था। मूसा अलैहिस्सलाम को पीछे पीछे दौड़ना नहीं पड़ता था, बकरियों को वो जाने नहीं देवे, भागने नहीं देवे, बकरियों को जमा कर लेवे, कोई भेड़िया और रीछ को आने नहीं देवे। बल्कि तफसीरों में लिखा है कि इस डंडे के अंदर 1000 मौजजे थे, अजीब खूबियों वाला ये डंडा था। तुर्की में इस्तांबुल में तोपकापी म्यूजियम के अंदर एक ऐसा डंडा रखा हुआ है बहुत हिफाजत से, और उस पर लिखा हुआ है कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा है। इसकी पूरी को कारगुजारी जो मेरी किताब है देखी हुई दुनिया उर्दू और गुजराती में, उसके अंदर जहां तुर्की के सफर की कारगुजारी है उसमें आप पढ़ लीजिए, वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीब अजीब तबर्रुकात की कारगुजारी भी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो फिरौन को मौजजात दिखलाए लेकिन फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, बल्कि दरबार में से उठ गया, पिट फिरा करके चला गया। चूंकि उसको ये डर हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम के दोनों मौजजे देख करके मजमा जो था वो मूसा अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी कहीं मान नहीं लेवे और लोग मूसा के ऊपर ईमान नहीं ले आवे, इसको ये डर लग गया। तो उसने क्या किया कि पूरे इजिप्त से जादूगरों को उसने जमा किया मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए। लोगों को ये दिखलाना चाहता था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो चमत्कार है वो चमत्कार तो मेरे जादूगर लोग भी कर सकते थे। इस बात को दिखाने के लिए उसने पूरे मिस्र के जादूगरों को जमा किया और फिर उसने एक खतरनाक दावा किया। फकाल अन रब्बुकुमुल आला, मैं तो बड़ा खुदा हूं। ऐसा क्यों कहा उसने? इसमें एक बात ये भी छुपी हुई थी कि अगर जादूगर लोग मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आवे और वो हार जावे तो भी मूसा जिस रब और अल्लाह की तरफ ईमान लाने की दावत देते हैं उस रब और अल्लाह के मुकाबले में फिरौन ये कहता था कि मैं बड़ा खुदा हूं। यानी चलो जादूगर हार गए, मूसा जीत गए, तो मूसा जिस रब की इबादत की दावत देते हैं वो छोटे रब, और फिरौन ये कहता था कि मैं तुम्हारा बड़ा रब। ले भाई ले, फकाल अन रब्बुकुमुल आला, ये उसने जो है दावा कर डाला। अजीब, दो बड़े आदमी एक जमाने में जमा है, एक कामिल हिदायत वाले, सबसे बड़े हिदायत वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और एक बहुत बड़ा गुमराही वाला यानी फिरौन, दोनों एक जमाने में जमा है। अल्लाह ताला ने फिरौन को सजा दी। कैसी सजा दी? फाखज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। नकाल कहते हैं ऐसी सजा को जिसको देखकर दूसरों को इबरत हो जावे, सब लोग सहम जावे। अरे 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 भाई, किसी एक को सपाटे मारे तो सब लोग देख करके डर जाए, अरे भाई ऐसा मत करो वरना सपाटे पड़ते हैं यहां। तो ऐसी सजा को नकाल कहा जाता है। तो आखिरत के अंदर अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालेंगे, और दुनिया में अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम के लोगों को पानी में डुबो के खत्म कर दिया। और आखिरत की सजा असली सजा है। देखो अल्लाह ने आयत में पहले नंबर पर बयान किया ना, नकाल अल आखिरा, आखिरत की सजा असली सजा, और दुनिया की सजा तो आखिरत की सजा तक पहुंचने का वसीला है, जरिया है, और आखिरत की सजा दायमी है, हमेशा है, और दुनिया के अजाब के मुकाबले में आखिरत की सजा 1000 दर्जा खतरनाक है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया, इन फी ज़ालिक लइबरत लिमन यख़शा। इबरत पकड़ो इबरत, फिरौन जैसे लोगों को अल्लाह ने पानी में डुबो के खत्म कर दिया। इसीलिए इंसानों ध्यान से सुनो, जो लोग दूसरों को गुमराह करते हैं, रास्ते से भटकाते हैं, और जो उनके इमाम लीडर पेशवा होते हैं, उनकी गंदी और नापाक साजिश ज्यादा देर चलती नहीं है। एक न एक दिन अल्लाह ताला उसको बर्बाद और खत्म कर देते हैं। दूसरी इबरत समझो, अल्लाह ताला बड़े हलीम हैं, बड़े हिल्म वाले हैं। अल्लाह ताला गुमराहों को, नाफरमानों को ढील देते हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार नहीं छोड़ देते, बल्कि एक न एक दिन अल्लाह ताला उनको वाकई हकीकी सजा देते हैं। तीसरी बात यह है कि मौजज़े, नबियों के चमत्कार देखने से उस आदमी को फायदा होता है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर होता है। बाकी जिसके दिल के अंदर कुफ्र की जड़ जम गई हो, उसके ऊपर मौजज़े का कोई असर नहीं होता है। अबू जहल ने, अबू लहब ने कितने हुजूर के मौजज़े देखे, चांद के 2 टुकड़े देखे, फिर भी वो ईमान नहीं लाए। चौथी इबरत ये है, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने खतरनाक काफिर जो अपने आप को रब्बे आला कहता था, उसके साथ भी बहुत नरमी से बात की, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमाई, जीत अता फरमाई। लिहाजा नबियों को और दीन के दाइयों को, दीन की दावत देने वालों को चाहिए कि वो सामने वालों के साथ नरमी से बात करे, बेअदबी, सामने वाला बेअदबी कर देवे, सामने वाला कुफर की बात बोले तो गुस्से में न आ जावे, गमगीन न हो जावे, यकीन के साथ दावत देता रहे। एक न एक दिन अल्लाह ताला दावत देने वालों को फतह और कामयाबी जरूर अता फरमाएंगे, इस बात का यकीन है। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने रात और दिन का कितना प्यारा प्यारा निजाम बनाया। रात की अंधेरी भी अल्लाह की नेमत, दिन का उजाला भी अल्लाह की नेमत। रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, सब सूरज के साथ जुड़े हुए हैं, सूरज के साथ कनेक्ट है। सूरज निकलता है, रोशनी होती है, सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है। और दुहा, दुहा किसको कहते हैं? ये 10-9 बजे का जो वक्त होता है ना, जिसमें पूरी धूप फैल जावे, दिन पूरा हो जावे, उसको दुहा कहा जाता है। अल्लाह सुबहानहू व ताला ने कितनी प्यारी जमीन बिछाई पानी के ऊपर, उसमें किस्म किस्म के अल्लाह ताला ने चमन बनाए, बागीचे बनाए, फल फूल बनाए। जमीन के अंदर गर्मी भी है और ठंडक भी है, और उसकी वजह से जमीन के अंदर से पानी निकलता है, कहीं नदी निकलती है, कहीं झरना चश्मा निकलता है, और फिर उसके जरिए से घास चारा निकलता है, और इंसान और जानवर उसको खाते पीते हैं। और अल्लाह ताला की इतनी बड़ी अजीम नेमत इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए। ये सब चीजें बयान करके अल्लाह हम सबको कयामत याद दिला रहे हैं। अब एक सवाल है, वो समझ लो कि भाई जमीन पहले पैदा हुई या आसमान पहले पैदा हुए, कौन पहले पैदा हुआ? तो एक छोटी सी बात हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमारे सिलसिले के बड़े अकाबिर में से हैं, ताबीइन में से हैं, बहुत बड़े वली हैं, इमामुल औलिया है, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले जमीन को बहुत छोटा सा पैदा किया था। है ना, बच्चा पैदा होता है तो पहले छोटा होता है, तो अल्लाह ताला ने जमीन को पहले पैदा किया तो बहुत छोटा सा बनाया, फिर उस जमीन के अंदर अल्लाह ने पहाड़ों की रगें पैदा की, पहाड़ नहीं पैदा किए, पहाड़ की रग, रग यानी जिसको अपने नस कहते हैं ना, नस खून जो चलता है वो, तो पहाड़ की रगें और नसें अल्लाह ने पैदा की, फिर इन रगों में अल्लाह ने बरकत दी जिसकी वजह से पानी अंदर जो है आने लगा, और इतना पानी जमीन में जमा हुआ ताकि उसके जरिए से नदी और चश्मे और झरने निकले, फिर खाने पीने की चीजों का भी अंदाजा अल्लाह ने तय कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, उस वक्त तक धुआं 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 था, फिर उस धुएं में से अल्लाह ने सात आसमान बना दिए, उसके बाद फिर जमीन को अल्लाह ने फैला दिया, इतना फैलाया इतना फैलाया इतना फैलाया जितनी इस वक्त हम जमीन दुनिया में देख रहे हैं। और सबसे पहले मक्का मुकर्रमा के अंदर जमीन अल्लाह ने पैदा फरमाई, और वहीं से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की जमीन फैलाई। इसी की तरह इशारा कुरान की एक आयत से भी निकलता है, इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, तो इस कायनात की पैदाइश की शुरुआत के अंदर पहले अल्लाह सुबहानहु व ताला ने जमीन बनाई थी, चाहे छोटी सी। उसको यूं भी हम समझ सकते हैं जैसे कि घरों के अंदर औरतें हमारी रोटी बनाने से पहले आटे का पिल्ला बनाती है, गोल गोल आटे के टुकड़े बनाती है, फिर उसको पटले के ऊपर रखकर फैला करके पूरी रोटी औरतें बनाती है इस तरीके से। बहरहाल इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी धरती जो अल्लाह सुबहानहु व ताला ने बनाई, आसमान बनाए, पानी जमीन के अंदर बहाया, इंसान के खाने पीने की सब नेमतें अता फरमाई ताकि इंसान कयामत का यकीन हासिल कर लेवे। कयामत आने वाली है, मर के अल्लाह के दरबार में जाना है, इसीलिए एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। अल्लाह हम सबको अपनी जात के ऊपर यकीन अता फरमाए, अपनी जात से सही ताल्लुक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको दुनियावी गफलत से हिफाजत में, अमान में, सलामती में रखे। फ़इदा जाअति ताम्मतुल कुबरा, सूरे वन्नाज़िआत का आज ये तीसरा दिन है और उसकी 34 नंबर की आयत तिलावत की गई। فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, پھر جب وہ سب سے بڑا قیامت کا ہنگامہ برپا ہو جائے گا, قیامت کے دن بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعا, جس دن انسان اپنے سب کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, اور جہنم کو دیکھنے والوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا. قیامت کے میدان میں سے جہنم سب کو نظر آئے گی, سب اس جہنم کو دیکھیں گے قیامت کے میدان میں سے. لیکن دیکھنے دیکھنے کے اندر بھی فرق ہوتا ہے نا. بعض لوگوں کو جہنم نظر آئے گی, جہنم دیکھیں گے, اور وہ اس کو دیکھ کر کے ڈریں گے, پریشان ہوں گے, اس لیے کہ وہ دیکھنے والے کافر اور نافرمان ہوں گے. وہ جب قیامت کے میدان میں سے جہنم کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ ڈریں گے کہ اب اس جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا, اس جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا, اس جہنم کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی. اسی لیے وہ اس کو دیکھیں گے اور دیکھ کر کے اور زیادہ گھبرا جائیں گے. اور ایمان والوں کو بھی جہنم نظر آئے گی, لیکن وہ جہنم کیسی نظر آئے گی؟ ایمان والوں کو جہنم دیکھنے کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے کہ کسی دشمن کو مار پڑ رہی ہو, سزا ہو رہی ہو, تو دیکھنے والے خوش ہوں گے کہ دیکھو ہمارے دشمن کو سپاٹے پڑ رہے ہیں, سزا ہو رہی ہے, مار پڑ رہی ہے, خوش ہوتے ہیں. اس طرح ایمان والے بھی قیامت کے میدان میں بیٹھ کر جہنم کو دیکھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم سے ہم کو بچا لیا. فَأَمَّا مَن طَغَى, سو جو آدمی حد سے نکل گیا تھا, یعنی دنیا میں شریعت کی بارڈر سے باہر نکل گیا تھا, دنیا میں شریعت پر عمل نہیں کرتا تھا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتا تھا, دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی, یعنی دنیا کو زیادہ چاہتا تھا, دنیا سے زیادہ محبت رکھتا تھا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. من موجی لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. من چاہی زندگی جس نے گزاری جہنم میں, رب چاہی زندگی گزاری جنت میں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تھا اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا تھا. ماشاءاللہ ایمان والے دنیا میں ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی, ایک دن اللہ کی عدالت میں جانا ہے, اللہ کی کورٹ میں جانا ہے, پوری زندگی کا حساب دینا ہے, اللہ کو سوالوں کے جواب دینے ہیں. اور یہ ایمان والے اللہ سے ڈر ڈر کر کے خواہشات, گندی گندی خواہشات, ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى, تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ ہم سب کو جنتی اپنے فضل و کرم سے بنا دے. وے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں कि वो कयामत कब कायम होगी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से काफिर आते थे, सवाल करते थे कि ये कयामत 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 आप कहते रहे होते हो, तो ये कयामत कब आने वाली है। तो एक तो ये लोग मानते नहीं थे कयामत को, लेकिन मजाक के तौर पर पूछने आते थे कि कयामत कब आने वाली है। फीमा अंतमिकराहा, उसका वक्त बयान करने से तुम्हारा क्या ताल्लुक, उसका वक्त बयान करने से तुम्हारा क्या काम है। यानी कयामत का टाइम बयान करना ये नबी की जिम्मेदारी नहीं है, नबी का काम नहीं है कि वो कयामत का टाइम बयान करे। नबी को तो अल्लाह ताला ने ये काम दिया कि दुनिया में जाओ और लोगों को कयामत के अजाब से डराओ। कयामत कब आएगी, किस साल आएगी, वो नबी का काम नहीं है टाइम बतलाना। टाइम किसको मालूम है, इला रब्बी का मुंतहा, उस कयामत के होने का टाइम और इल्म का मुंतहा तुम्हारे रब की जानिब है। उस कयामत के वाके होने का इल्म रब ही के हवाले है, यानी अल्लाह ही जानते हैं कि कयामत कब आने वाली है। बस मैं आपको इतना बता दूं, हदीस शरीफ से मालूम होता है कि जुमा का दिन होगा। कौन सी जुमा, वो अल्लाह ने नहीं बतलाया। इन्नमा अंत मुंदिरु मन यख्शाहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स इस कयामत से डरता हो तुम सिर्फ उसी को डराने वाले हो। जिसके दिल में डर होगा उसको कयामत की बात से फायदा होगा, बाकी जो मानता नहीं डरता नहीं उसको कयामत कहने से कोई फायदा नहीं। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यलबतू इल्ला इल्ला अशियतन औ दुहाहा, वो लोग जिस दिन उस कयामत को देख लेंगे तो उनको ऐसा मालूम होगा कि वो दुनिया में या कब्र में एक शाम या उसकी एक सुबह से ज्यादा नहीं रहे। देखो भाई, जब मुसीबत आती है ना तो फिर राहत के दिन आदमी को बहुत थोड़े मालूम होते हैं, बहुत छोटे मालूम होते हैं। मुसीबत जब आती है तब, कयामत सबसे बड़ी मुसीबत है। तो जब कयामत की बहुत बड़ी मुसीबत आएगी तो ये दुनिया की राहत, दुनिया का मौज मजा, दुनिया की अय्याशी वाली जिंदगी इंसान को बहुत छोटी और बहुत थोड़ी और बहुत मामूली नजर आएगी। अजीब हाल हो जाएगा भाई कयामत के दिन। कयामत के दिन की तकलीफ देखकर दुनिया कैसी लगेगी, आधा दिन आधे दिन जैसी मालूम होगी। अल्लाह ताला हम सबको कयामत के दिन आसानियां अता फरमाए। यहां सूरह वन्नाज़िआत मुकम्मल हुई बिहम्दिल्लाहि ताला व बितौफीकिही। अब इन आयतों के अंदर जो अहम अहम मजामीन है उसमें एक है वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, जहन्नम सबको कयामत के दिन नजर आएगी। लेकिन जहन्नम का गुस्सा, जहन्नम की गर्मी, जहन्नम की आग तमाम लोगों को नुकसान नहीं देगी। दो पार्टी होगी, ईमान वालों को जहन्नम की आग जहन्नम की गर्मी से कोई तकलीफ नहीं होगी, और नाफरमान लोगों को जहन्नम की आग और गर्मी से बहुत तकलीफ होगी। आगे फरमाया कि फअम्मा मन तगा, जो लोग शरीयत पर अमल नहीं करते, अल्लाह के कानून को तोड़ते हैं, दुनिया की नापाक मोहब्बत में पड़े हुए हैं, बुराई और गुनाह में पड़े हुए हैं और दुनिया को सब कुछ समझते हैं, दुनिया को बेहतर समझते हैं, दुनिया को ज्यादा अच्छा समझते हैं और आखिरत को कुछ भी नहीं समझते, बस ये जहन्नम में जाने वाले लोग हैं। देखो, जब कोई ऐसा काम सामने आवे जिससे दुनिया में मजा आता हो लेकिन आखिरत में सजा होती हो, ऐसे मौके पर आदमी आखिरत की सजा से न घबरावे और दुनिया का मजा लूटने की फिक्र करे, बस ये चीजें हैं जहन्नम में ले जाने वाली। फाइनल जहीम ही अलमावा, तो वह आ सरल हयात, दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझो कि जब दुनिया में कोई काम हमारे सामने आता है, कोई चीज हमारे सामने आती है जिसमें दुनिया का मजा है लेकिन आखिरत में उसके ऊपर बड़ी सजा होने वाली है, तो इंसान आखिरत की सजा को भूल जावे और दुनिया की राहत का मजा ले लेवे, तो ये चीज इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, शराब पीवे, जीना करे, फिल्म देखे, गाना गावे, दुनिया में मजा आएगा लेकिन आखिरत में सजा होगी। अब आदमी दुनिया में मजा आ रहा है इसलिए शराब पी रहा है, गाने गा रहा है, फिल्म देख रहा है, जीना कर रहा है, तो याद रखो यही चीज जहन्नम में ले जाने का जरिया बनती है। अल्लाहु अकबर। याद रखो, ये दुनिया तो एक सफर है, सफर, ट्रैवलिंग। हदीस में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नक गरीब, दुनिया में से रहो जैसे के अजनबी होते हैं, परदेसी होते हैं, मुसाफिर होते हैं, इस तरह दुनिया में जिंदगी गुजारो और सारे गुनाहों की जड़ दुनिया की नापाक मोहब्बत है, सारे गुनाहों के। अल्लाह हम सब के दिलों से दुनिया की गंदी मोहब्बत को निकाल देवे। वनहन नफ्सानिल हवा, ये नाजायज ख्वाहिश है ना, वो बड़ी खतरनाक चीज है। शेख अबू बकर वर्राक फरमाते हैं कि इस दुनिया में सबसे बुरी चीज कौन सी, सबसे बुरी चीज कौन सी, जरा ध्यान से समझो सवाल जवाब, सबसे बुरी चीज कौन सी। का अल्लाह ताला ने नफ्स की ख्वाहिश से ज्यादा बुरी चीज कोई पैदा नहीं की, नफ्स की नापाक और गंदी ख्वाहिश के जो मन में आया वो पूरा करो, जो दिल में आया पूरा करो, वो चीज शरीयत में गुनाह है, नाजायज है, हराम है, और मन में आया पूरा कर लो, बस ये चीज है नफ्सानी ख्वाहिश गंदी, और ये चीज इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है, सबसे बुरी चीज है। और कुरान में एक दूसरी जगह फरमाया, अफरअयत मन इत्तखज इलाहु हवा, अपना खुदा किसको माना, अपना मालिक और रब किसको माना, जो मन में आया वो खुदा। अरे नहीं, जो मन में आता है, दिल में आता है, ख्वाहिशात नफ्सानी में आता है, विचारों में आता है, वो कभी रब नहीं। रब मालिक तो अल्लाह है, जो हमारे पैदा करने वाले वो अल्लाह है। इसलिए आगे हजरत फरमाते हैं कि बालिग होने के दो अलग अलग मफहूम हैं। का मसाइल वाले मुफ्तियाने किराम तो ये कहेंगे कि आदमी बालिग कब होता है, जब खेल कूद की मोहब्बत दिल से निकल जाए, उम्र 15 साल की हो जाए, या बालिग होने की कोई निशानी जाहिर हो जावे। और अल्लाह के नेक बंदे तरीकत वाले ये कहते हैं कि आदमी जब अपने नफ्स की ख्वाहिशात से बाहर निकलता है, नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़ देता है, तब जाकर के वो आदमी बालिग कहलाता है। क्या प्यारी बात फरमाई। उसके बाद समझो, ये हमारे नफ्स के अंदर, आत्मा के अंदर, मन के अंदर बहुत सारी बातें आती है, लेकिन नफ्स और आत्मा और मन में आई हुई हर बात को नहीं मानने का, उसका विरोध करने का, उसकी मुखालफत करने की, उसको छोड़ देने का। और उसके तीन दर्जे हैं, अलग अलग समझो। पहला मकाम और दर्जा ये है कि गलत अकीदों से अपने आप को बचाओ। गंदी गंदी मान्यता, गलत अकीदे, उससे अपने आप को बचाओ। जब आदमी सही अकीदे रखेगा तो सच्चा पक्का मुसलमान कहलाने का हकदार होगा। सुन्नत पर, शरीयत पर, सहाबा के तरीके पर अमल करने वाला अहले सुन्नत व जमात, अहलु सुन्नति वल जमा, सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान कहलाएगा। बातिल अकीदों से बचना बहुत जरूरी है। नंबर दो, गुनाह का इरादा दिल में आया, गुनाह का विचार दिल में आया, तो गुनाह को छोड़ दो। यूं सोचो कि मुझे अल्लाह के सामने हिसाब देना है, तो फिर गुनाह के विचार को छोड़ दो, गुनाह के ख्याल को छोड़ दो। यह है दूसरा दर्जा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मुश्तबह चीज से बचता है, यानी डाउटफुल चीज से बचता है, उसने अपनी आबरू और अपने दीन को बचा लिया। और जो आदमी मुश्तबे और डाउटफुल चीज में पड़ जाता है, वो आखिर में हराम में पड़ जाता है। अब ये डाउटफुल चीजें क्या क्या है वो भी समझो। जिस चीज के बारे में शक हो कि ये चीज जायज है कि नाजायज है, हलाल है कि हराम है, अच्छी है कि बुरी है, ये चीज डाउटफुल कहलाती है। डाउटफुल चीज, मुश्तबे चीज से अपने आप को बचाओ तो हराम से हिफाजत हो जाएगी। और तीसरा दर्जा क्या है कि अल्लाह का खूब जिक्र करो, अल्लाह के दीन के लिए खूब मेहनत करो, अपने नफ्स को पाक करो, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में जाओ, अपने अल्लाह वालों के पास बैत हो जाओ, उनकी बात पर अमल करो, अपने दिल को ऐसा पाक बनाओ, ऐसा पाक बनाओ कि कोई नापाक ख्वाहिश दिल में बाकी न रहे। हर ख्वाहिश, हर चाहत, हर विचार, हर इरादा अल्लाह की खुशी वाला हो जावे, अल्लाह को राजी करने वाला हो जावे। और उसी को एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। पक्का ईमान वाला, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पक्का ईमान वाला कौन कि उसकी नफ्स की ख्वाहिश, उसकी चाहत, उसके विचार, उसके मन की चाहतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीजा तरीके के मुताबिक हो जावे। हुजूर के पाकीजा तरीके, हुजूर की पाकीजा सुन्नत के मुताबिक जब इंसान की चाहत हो जावे, इंसान की ख्वाहिश हो जावे, तो ये आदमी पक्का ईमान वाला कहलाएगा। ये तीसरा दर्जा है। अल्लाह आपको मुझे महज अपने करम से, फजल से ये तीसरा दर्जा अता फरमा देवे, और जिंदगी की आखिरी घड़ी तक इस तीसरे दर्जे पर अल्लाह बाकी रखे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किसी अल्लाह वाले की खिदमत में जाना पड़ेगा, नफ्स को पाकीजा बनाना पड़ेगा। हाँ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। किसी अल्लाह वाले के सामने अपने आप को मिटाओ। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक दाना मिट्टी में मिलता है न तो जाकर के खूबसूरत फूलों वाला पौधा तैयार होता है। ये आयत के बारे में आता है ऐसे कि ये दो भाइयों के बारे में आयत नाजिल हुई। बड़ी अजीब आयत करीमा है। तगा और नहन नफ्स अनिल हवा। दो भाई थे हजरत मसअब इब्ने उमेर रदियल्लाहु ताला अन्हो और उनके सगे भाई हजरत आमिर इब्ने उमेर। इन दोनों भाइयों के बारे में यह आयत नाजिल हुई। दोनों भाई उनके अब्बा ने बहुत माल इनके लिए छोड़ा। अब्बा का इंतकाल हुआ तो बहुत माल मिला अब्बा की तरफ से। इनकी अम्मा जो थी ने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी और रात दिन अच्छा अच्छा खिलावे, अच्छा अच्छा पहनावे। लेकिन हजरत मसअब इब्ने उमेर रदी अल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते जाते थे। उसकी बरकत ये हुई कि दुनिया की नापाक लज्जतें छोड़ दी। रात को तहज्जुद में उठने लगे, दिन में रोजा रखने लगे, अच्छा अच्छा खाना छोड़ दिया। अखीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपना घर, अपनी दौलत, अपनी मजेदार जिंदगी छोड़ी और मदीने मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए। हुजूर से पहले इन्होंने हिजरत की हुजूर के हुक्म से, और वहां जाकर के लोगों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबहान अल्लाह। मसअब इब्ने उमेर, तुमने तो आलीशान घराना, आलीशान जिंदगी छोड़ी कुरान पढ़ाने के वास्ते, कुरान की खिदमत के लिए। और हुजूर को, हुजूर के मदीना जाने से पहले मदीना में मकतब शुरू हो गया, कुरान का मदरसा शुरू हो गया और हजरत मसअब इब्ने उमेर उसके उस्ताद बन गए। अल्लाह अल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक तशरीफ लाए। फिर उहुद की लड़ाई हुई तो उहुद की लड़ाई के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा, हुजूर का फ्लैग हजरत मसअब इब्ने उमेर ने उठाया। बहुत हिम्मत से मुकाबला करते करते शहीद हो गए। जब शहीद हुए ना तो इतने मालदार के बेटे थे लेकिन कफन में एक चादर थी और इतनी छोटी चादर थी कि उनकी लाश मुबारक के सर पे डालते तो पैर खुल जाते, पैर ढांकने जाते सर खुल जाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसअब के सर को ढांक दो चादर से और पैर के ऊपर इसघीर घास डाल दो। घास डालकर हजरत मसअब का कफन बना और उसमें उनको दफन किया गया। लेकिन जन्नती बन गए। और उनका भाई आमिर इब्ने उमेर रात दिन अय्याशी, रात दिन लज्जत मजे, रात दिन जो है अय्याशी में पड़ा रहा और हजरत मसअब से भी लड़ता रहता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर भागता था। अजीब बात ये कि अभी बदर की जो मजलिस चल रही है तो बदर की लड़ाई के अंदर वो मक्का के मुशरिकों की तरफ से आया और मारा गया और जहन्नम के अंदर जला। आज़न अल्लाहु मिन सुइल खातिमा। अल्लाह बुरे खात्मे से हम सब की हिफाजत फरमावे। तो कहते हैं कि ये दोनों भाइयों के बारे में आयत नाजिल हुई दोनों के तकाबुल के अंदर। और मक्का के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के बारे में सवाल करने के लिए आते थे। लेकिन नबी की जिम्मेदारी है ही नहीं कि भाई फ्यूचर की, भविष्य की बातें बतलाना ये नबी की जवाबदारी है ही नहीं। आज भी दुनिया में बहुत से लोग मौलानाओं के पास आते हैं, मुफ्तियाने की राम के पास आते हैं कि जरा भविष्य देख दो नी, कौन सी चीज कैसी कब होगी जरा देख के कहो नी। वो यूं समझते हैं कि हमने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, दीन पढ़ा, तो भविष्य देखने के लिए पढ़ा। गलत है। जब नबी को मुस्तकबिल मालूम नहीं, भविष्य मालूम नहीं, फ्यूचर मालूम नहीं, तो फिर उलमा को, मुफ्तियों को कहां से मालूम होगा? नबी का काम किया, अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों को पहुंचा देना। दूसरा काम किया, कयामत से लोगों को डराना। चाहे कयामत का टाइम मालूम न होवे, बस यही काम है उलमाए किराम का, मुफ्तियाने किराम का, अल्लाह के अहकाम पहुंचाओ। और टाइम फिक्स किसी को मालूम नहीं, बस कयामत से डराओ कि कयामत कब आने वाली है। मुस्तकबिल की, गैब की तमाम बातें, छोटी बड़ी, नबी को भी मालूम नहीं, वली को भी मालूम नहीं। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला नबी को भविष्य की, मुस्तकबिल की बास बातें बतला देते हैं। ऐसी बातें हुजूर की जिंदगी में भी हुई, कुरान में भी मौजूद है। बाज औलियाए किराम अल्लाह वालों को कश्फ और इल्हाम के जरिए पता चल जाता है। तो ये कोई कानून नहीं है, अल्लाह कभी कभी ऐसी चीजें दिखला देते हैं अपने नेक बंदों को। भाई कयामत के दिन दुनिया जो है ना, बहुत छोटी मालूम होगी, बहुत छोटी। कितनी छोटी? इल्ला शियतन औ दुहाहा। अशिया कहते हैं दोपहर से लेकर सूरज डूबने तक का वक्त, जवाल होता है ना, जवाल से लेकर सूरज डूबने का वक्त। और दुहा कहते हैं सूरज निकलने से लेकर जवाल तक का वक्त। तो जिन लोगों की जिंदगी रंज में गुजरी दुनिया के अंदर, टेंशन में, तकलीफ में, दुनिया में भी तकलीफ और ईमान नहीं था इसलिए आखिरत में भी तकलीफ, तो ऐसे लोगों को कयामत के दिन दुनिया अशिया मालूम होगी, यानी दोपहर से लेकर रात तक की दुनिया मालूम होगी। क्योंकि आमतौर पर आदमी काम करते करते थकता है दोपहर के बाद। सुबह काम करने में थोड़ा मूड होता है, लेकिन दोपहर हो गई तो जरा थकता है, इसीलिए दोपहर में आराम करने का दिल चाहता है। तो जिन लोगों की जिंदगी दुनिया में भी खराब थी, आखिरत में भी खराब, उन लोगों को कयामत के दिन दुनिया ऐसी लगेगी जैसे दोपहर से लेकर शाम तक दुनिया में रह करके गए। और जो लोग ऐसे हैं कि दुनिया की जिंदगी बहुत मजे में गुजारी लेकिन ईमान नहीं था इसलिए कयामत में अजाब होगा, तो इनको कयामत के दिन दुनिया की जिंदगी सुबह से लेकर दोपहर तक की मालूम होगी। और देखो हमारे दिन के अंदर सुबह सादिक से दिन शुरू होता है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दोपहर से दिन समझते हैं। उस एतबार से भी कहा गया हो इल्ला आशियतन औ दुहाहा। और जो है दुनिया में रहने की मुद्दत के बारे में उनको तरद्दुद होगा कि हम एक दिन रहकर आए या आधा दिन रहकर के आए। इसीलिए हकीकत बात यह है कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। दुनिया में कितनी भी राहत हो, दुनिया में कितना भी आराम हो, लेकिन आखिरत के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए भाई इस दुनिया के अंदर अय्याशी मत करो। कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाओगे तो ये दुनिया बहुत थोड़ी सी मालूम होगी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया की नापाक मोहब्बत से दिल को पाक और साफ रखे, और अल्लाह हम सबको आखिरत का ध्यान अता फरमावे। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी जिस दमा कर टकराएगी, ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा रमदान का, वो भी खत्म होने के करीब आया है। खूब मगफिरत की दुआ करो कि अल्लाह ताला इस अशरे के अंदर आपकी, मेरी, पूरी उम्मत मोहम्मदिया मुसलिमा की मगफिरत फरमा देवे।